पृष्ठ संख्या 31। शिकारी कई रूसों का जार ही क्यों न हो, इस समय तो एक रोटी और गरम बिस्तर, अग्नि की एक चिंगारी और टूटी छत पर उसकी सारी राजधानियां बिक गईं। अब यदि वह अपना सारा राज्य उस किसान को उसकी अमूल्य रक्षा के मोल में देना चाहे तो भी वह तुच्छ है। यदि वह अपना दिल ही देना चाहे तो भी वह तुच्छ है। अब उस निर्धन और निरक्षर पहाड़ी किसान की दया और उदारता के कर्म के मौन व्याख्यान को देखो। चाहे शिकारी को पता लगे चाहे न लगे, परंतु राजा के अंतस के मौन जीवन में उसने ईश्वरीय औदार्य की कलम गाड़ दी। शिकार में अचानक रास्ता भूल जाने के कारण जब इस राजा को ज्ञान का एक परमाणु मिल गया, तब कौन कह सकता है कि शिकारी का जीवन अच्छा नहीं। इसके मौन से प्रसूत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। इसकी उपस्थिति से मन और हृदय की ऋतु बदल जाती है। तीक्ष्ण गर्मी से जले भुने व्यक्ति आचरण के काले बादल की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। मानसोत्पत्त शरद ऋतु से क्लेशातुर हुए पुरुष इसकी सुगंध में अटल वसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। आचरण के नेत्र के एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। आचरण के आनंद नेत्र से उन विष्णु होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होते, सूखे काष्ठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं, सूखे कुपों में जल भर आता है, नए नेत्र मिलते हैं, कुछ पदार्थों के साथ एक नया मैत्रीभाव फूट पड़ता है। सूर्य जल वायु पुष्प पत्थर घास पात नर नारी और बालक तक में एक अश्रुत पूर्व सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा, सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती है। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। विचार करके देखो मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय को धुनी को मन के लक्ष्य को ही न बदल दिया। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का, तारागण के कटाक्ष पूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर देखो। सूर्यास्त होने के पश्चात श्री वेंकटेश चंद्रसेन और महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी, यह तो कल की बात है। कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्र से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। प्रेम की ऐसी भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपोलों की मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गठा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेशों से, न अंजिले से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़ों की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का प्रारूप प्रत्यक्ष होता है। बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल से डुबो डुबो कर और तन को अपने विचित्र हथौड़े से सुडौल करके इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वह आम का पेड़ नहीं जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे, इसके बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उसकी अत्यल्प छटा अवश्य दिखाई देती है। पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खों में तो और भी अधिक बदहजमी हो जाती है। सारे वेद और शास्त्र भी यदि घोलकर पी लिए जाएं, तो भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती। आचरण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को तर्क वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। शब्द और वाणी तो साधारण जीवन के चोचले हैं, ये आचरण की गुप्त गुहा में नहीं प्रवेश कर सकते। वहां इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वेद इस देश में रहने वाले के विश्वासानुसार ब्रह्मवाणी है, परंतु इतना काल व्यतीत हो जाने पर भी आज तक वे समस्त जगत की भिन्न भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा न बुला सके, न समझा सके, न सिखा सके। यह बात हो कैसे? ईश्वर तो सदा मौन है। ईश्वरीय मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं। वह केवल आचरण के कान में गुरु मंत्र फूंक सकता है। वह केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञानोदय कर सकता है। किसी का आचरण वायु के झोंकों से हिल जाए तो हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की गोलंदाजी और आंधी से उसके सिर के एक बाल तक का बांका न होना एक साधारण बात है। पृष्ठ संख्या 31। पुष्प की कोमल पंखुड़ी के स्पर्श से किसी को रोमांच हो जाए, जल की शीतलता से क्रोध और विषय वासना शांत हो जाए, बर्फ के दर्शन से पवित्रता आ जाए, सूर्य की ज्योति से नेत्र खुल जाए, परंतु अंग्रेजी भाषा का व्याख्यान चाहे वह कार्लायल ही का लिखा हुआ क्यों न हो, बनारस में पंडितों के लिए राम रोला ही है। इसी तरह न्याय और व्याकरण की बारीकियों के विषय में पंडितों के द्वारा की गई चर्चाएं और शास्त्रार्थ संस्कृत ज्ञानहीन पुरुषों के लिए स्टीम इंजन के फप 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 शब्द से अधिक नहीं है। यदि आप कहें व्याख्यानों द्वारा, उपदेशों द्वारा, धर्म चर्चा द्वारा कितने ही पुरुषों और नारियों के हृदय पर जीवन व्यापी प्रभाव पड़ा है, तो उत्तर यह है कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता। प्रभाव तो सदा सदाचरण का पड़ता है। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मंदिर और हर मस्जिद में होते हैं, परंतु उनका प्रभाव तभी हम पर पड़ता है जब गिरजे का पादरी स्वयं ईसा होता है, मंदिर का पुजारी स्वयं ब्रह्मर्षि होता है, मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर और रसूल होता है। यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या जिस जाति की हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने को गंगा में फेंक दे, चाहे फिर उसके प्राण यह काम करने में रहें चाहे जाएं, तो इस कार्य के प्रेरक आचरण की मैनमयी भाषा किस देश में, किस जाति में और किस काल में कौन नहीं समझ सकता? प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु और क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप ही आप समझ लेते हैं। जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाष्यहीन भाषा का चिन्ह है। बालकों में इस शुद्ध मौन का नाद और हास्य भी सब देशों में एक ही सा पाया जाता है। एक दफे एक राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते रास्ता भूल गए, उनके साथी पीछे रह गए, घोड़ा उसका मर गया, बंदूक हाथ में रह गई, रात का समय आ पहुंचा। देश बर्फानी, रास्ते पहाड़ी, पानी बरस रहा है, रात अंधेरी है, ओले पड़ रहे हैं, ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक को हिला रही है। प्रकृति ने इस घड़ी इस राजा को अनाथ बालक से भी अधिक बेसबरों समान कर दिया। इतने में दूर एक पहाड़ी की चोटी के नीचे टिमटिमाती हुई बत्ती की लौ दिखाई दी। कई मील तक पहाड़ के ऊंचे नीचे उतार चढ़ाव को पार करने से थका हुआ, भूखा और सर्दी से ठिठुरा राजा उस बत्ती के पास पहुंचा। यह एक गरीब पहाड़ी किसान की कुटी थी। उसमें किसान, उसकी स्त्री और उसके दो तीन बच्चे रहते थे। किसान शिकारी को अपनी झोपड़ी में ले गया, आग जलाई, उसके वस्त्र सुखाए, दो मोटी मोटी रोटियां और साग उसके आगे रखा। उसने खुद भी खाया और शिकारी को खिलाया। ऊन और रीछ के चमड़े के नरम और गरम बिछौने पर उसने शिकारी को सुलाया। आप बेबिछौना के भूमि पर सो रहा। धन्य है तू मनुष्य, तू ईश्वर से क्या कम है? तू भी तो पवित्र और निष्काम रक्षा का करता है। तू भी तो अपान जनों का आपत्ति से उद्धार करने वाला है। क्या जंगल के ऐसे जीवन में इसी प्रकार के व्याख्यानों से मनुष्य का जीवन सनय सनय नया रूप धारण नहीं करता? जिसने शिकारी के जीवन के दुखों को नहीं सहन किया, उसको क्या पता कि ऐसे जीवन की तह में किस प्रकार और किस मिठास के आचरण का विकास होता है? इसी तरह क्या एक मनुष्य के जीवन में और क्या एक जाति के जीवन में पवित्रता और अपवित्रता भी जीवन के आचरण को भली भांति गढ़ती हैं और उस पर भली भांति कुंदन करती हैं? जगई और मघई यदि पक्के लुटेरे न होते तो महाप्रभु चैतन्य के आचरण संबंधी मौन व्याख्यान को ऐसी दृढ़ता से कैसे ग्रहण करते? नग्न नारी को स्नान करते देख सूरदास जी यदि कृष्णार्पण के लिए गए अपने हृदय को एक बार फिर उस नारी की सुंदरता निरखने में न लगाते और उस समय फिर एक बार अपवित्र न होते तो सूर सागर में प्रेम का वह मौन आख्यान, आचरण का वह उत्तम आदर्श कैसे दिखाई देता। कौन कह सकता है कि जीवन पवित्रता और अपवित्रता के प्रतिद्वंद्वी भाव से संसार के आचरणों की एक अद्भुत पवित्रता का विकास नहीं होता। यदि मेरी माडलिन वेश्या न होती तो कौन उसे ईसा के पास ले जाता और ईसा के मौन व्याख्यान के प्रभाव से किस तरह आज हमारी पूजनीय माता बनती। कौन कह सकता है कि ध्रुव की सौतेली माता अपनी कठोरता से ध्रुव को अटल बनाने में वैसी ही सहायक नहीं हुई जैसी कि स्वयं ध्रुव की माता। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी की पवित्र पवित्रता है। जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ हो रहा है। अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थ के संयोग का प्रतिबिंब होता है, जिनको हम पवित्रात्मा कहते हैं। क्या पता किन किन कूपों से निकल कर वे अब उदय को प्राप्त हुए हैं। जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं, क्या पता किन किन अधर्मों को करके वे धर्म ज्ञान को पा सके हैं। जिनको हम सभ्य कहते हैं, जो अपने जीवन में पवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं, क्या पता वे कुछ काल पूर्व बुरी और अधर्म अपवित्रता में लिप्त रहे हों, अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से भरी हुई अंधकारमय कोठरी से निकलकर ज्योति और स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले हुए देश में जब तक अपना आचरण अपने नेत्र न खोल चुका हो, तब तक धर्म के गूढ़ तत्व कैसे समझ में आ सकते हैं। नेत्र रहित को सूर्य से क्या लाभ, हृदय रहित को प्रेम से क्या लाभ, बहरे को राग से क्या लाभ, कविता साहित्य मीर पैगंबर गुरु आचार्य ऋषि आदि के उपदेशों से क्या लाभ उठाने का। यदि आत्मा में बल नहीं तो उसने क्या लाभ। जब तक जीवन का बीज पृथ्वी के मलमूत्र के ढेर में पड़ा है अथवा जब तक वह खाद की गर्मी से अंकुरित नहीं हुआ है और प्रस्फुटित होकर उसने दो नए पत्ते ऊपर नहीं निकल आए, तब तक ज्योति और वायु उसके किस काम के। पृष्ठ संख्या 33। जगत के अनेक संप्रदाय अनदेखी और अनजानी वस्तुओं का वर्णन करते हैं, पर अपने नेत्र तो अभी माया के पटल से बंद हैं और धर्मानुभव के लिए माया जाल में उनका बंद होना आवश्यक भी है। इस कारण मैं उनके अर्थ कैसे जान सकता हूँ। वे भाव, वे आचरण जो उन आचार्यों के हृदय में थे और जो उनके शब्दों के अंतर्गत मौनावस्था में पड़े हुए हैं, उनके साथ मेरा संबंध जब तक मेरा भी आचरण उसी प्रकार का न हो जाए तब तक हो ही कैसे सकता है। ऋषि को तो मौन पदार्थ भी उपदेश दे सकते हैं, टूटे फूटे शब्द भी अपना अर्थ भाषित कर सकते हैं। तुच्छ से तुच्छ कथा वस्तु उनकी आँखों से उसी महात्मा का चिन्ह है जिसका चिन्ह उत्तम से उत्तम पदार्थ है। राज्यों में फकीर छिपा है और फकीर में राजा, बड़े से बड़े पंडित में मूर्ख छिपा है और बड़े से बड़े मूर्ख में पंडित, वीर में कायर और कायर में वीर होता है, पापी में हिमात्मा, पापियों में महात्मा और महात्मा में पापी डूबा हुआ है। यह आचरण जो पापी में महात्मा और महात्मा में पापी जुड़ा हुआ है, यह आचरण जो धर्म संप्रदायों के अनुच्चारित शब्दों को सुनाता है हमें कहाँ। जब वही नहीं तब फिर क्यों न ये संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारतों के कुरुक्षेत्र बने। क्यों न अप्रेम, अपवित्रता, हत्या और अत्याचार इन संप्रदायों के नाम से हमारा खून करें। कोई भी धर्म संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता और आचार वाले पुष्पों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक हैं। सच्चा साधु धर्म का गौरव होता है। कोई भी धर्म संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता और आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक हैं। सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता। आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। आचरण के विचार विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूर शारीरिक प्राकृतिक मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में उन सब का क्या, एक महापुरुष और एक जाति के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सबको आचरण के संगठनकर्ता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों न हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि यूं ही करो और किस तरह नहीं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए यह सबको एक पथ नहीं बता सकता। आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी के अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया, उसने अपनी सड़क स्वयं ही बनवाई। इसी से उसकी बनाई हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना पड़ेगा। हर किसी को अपने देश कालानुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही बचानी पड़ेगी।